कपड़े धोने में अहाना और फलक दोनों के कपड़े भीग गए थे। अहाना ने कपड़े बदलकर उन्हें धूप में सुखाया। इतने में दोपहर के खाने का वक्त हो गया। सब कामों से निपटकर वो गहने निकालने के लिए कमरे में पहुंची तो साथ में रूपाली जी और उनकी बहन भी पहुंच गईं। अहाना को कुछ अजीब लगा, पर फिर उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अक्षय, अन्वय और अभिजीत जी संग बाहर ड्राइंग रूम में बैठे शादी के खर्चे का हिसाब देख रहे थे। फलक अपने कमरे में थी। अपने पहने हुए गहनों के अलावा अहाना ने बाकी सब गहने निकाल कर रख दिए। ससुराल से चढ़े थे सो अलग थे, उसके अलावा भी काफी कुछ था उसके पास। मायके से सब मिला था उसे। मासी, चाचू, बड़े पापा सबकी ओर से कुछ न कुछ सोने चांदी का मिला था उसे। रूपाली जी की बहन सब बॉक्स खोल खोल कर देख रही थी और साथ ही फुसफुसाते हुए बातें भी कर रही थी। अहाना चुप खड़ी सब सुन रही थी। दीदी, बहू के मायके से बड़े हल्के गहने चढ़े हैं। उस वक्त दोनों आंगन में बैठी थी जब रूपाली जी की बहन ने ये बात कही। रूपाली जी तो मौके की ताक में ही बैठी थी। बेहद अफसोस के साथ उन्होंने कहना शुरू किया, अब हम क्या बताएं तुम्हें, हम तो भलाई करके पछता रहे हैं। हमारे अक्षय के लिए इतने अच्छे घरों से रिश्ता आया था, पर नसीब फूटे थे हमारे। जाने कैसे घर परिवार से रिश्ता जोड़ लिया हमने। थोड़ी सी भी दुनियादारी की समझ और समाज में अपनी इज्जत की परवाह नहीं उन्हें, अपनी ना सही, कम से कम हमारा ही समाज और रिश्तेदारों के बीच मान रख लिया होता। हमने कुछ मांगा नहीं तो बेटी को खाली हाथ ही ससुराल भेज दिया, और एक हम थे, जितना लड़के वालों ने मांगा उससे ज्यादा दिया हमने अपनी बेटी को। यहाँ और कुछ तो आया नहीं, और जो कपड़े भेजे वो भी ऐसे सस्ते कि किसी को दिखाते हुए भी शर्माए। चलो, हमारे हमारे परिवारों और रिश्तेदारों के साथ जो किया सो किया, यहाँ हमने अपने तरफ से करनी करके उनके घर परिवार का मान रख लिया, पर अपनी बेटी को तो कुछ दिया होता। इतने हल्के हल्के गहने और सादे कपड़े देकर बेटी को विदा किया है कि जो देखेगा वही बात बनाएगा। सबके सामने उनके साथ साथ हमें भी अपमानित होना पड़ेगा, और बेटी शर्मिंदा होगी सो अलग। अरे, हमने भी अपनी बेटी की शादी की थी, पर मजाल हो जो ससुराल से कोई शिकायत आई हो, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और बहू में भी तुमने देखा ही है कितने भारी भारी गहने चढ़ाए हैं कि किसी को कुछ बोलने का मौका ना मिले, और कल को ये बात ना उठे कि बहू बेटी में हमने फर्क किया है। आदत से मजबूर खुद को अच्छा बनाते हुए अपने गुणगान करने के साथ उन्होंने अहाना और उसके परिवार को नीचा दिखाने का काम बखूबी अंजाम दिया था। दोनों औरतों के बीच होती ये बातें सुनकर अहाना का खून खौल उठा। खुद पर तो हर ज्यादती और सख्ती बर्दाश्त कर रही थी, पर जब बात उसके माता पिता और परिवार की इज्जत और मान सम्मान पर आई तो उसके लिए चुप रह पाना मुश्किल हो गया। उसने अभी कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे शादी से पहले जयंती जी की दी सीख याद आ गई। अहाना बेटा, अब आपकी शादी होने वाली है, और शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। ये आपका अपना घर है, आपका मायका है, यहाँ आप जैसे चाहे रह सकती है, जो चाहे कर सकती है, अपने मन की बात बेझिझक हमारे सामने रख सकती है। यहाँ आपको पूरी स्वतंत्रता मिली है क्योंकि ये आपके पापा का घर है। यहाँ हम कभी अगर आप पर गुस्सा करें तब भी बाद में प्यार ही न्योछावर करते हैं, आपकी सही गलत सब बातें बर्दाश्त कर जाते हैं। आप किसी बात पर बहस कर लेती है तो उसे भी चुपचाप सुन लेते हैं, पर आपके ससुराल में ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपके माता पिता नहीं सास ससुर होंगे, तो आपको वहाँ बहुत ध्यान से रहना है। आपकी सास जो भी कहें उसको चुपचाप सुन लीजिएगा, सही गलत की बहस मत कीजिएगा, वरना वो कहेंगे कि आपको हमने सही संस्कार नहीं दिए, बड़ों से जुबान लड़ाती है आप। अपनी सास की हर बात मानिएगा, उन्हें शिकायत का मौका मत दीजिएगा। उस घर में सबकी वैसे ही इज्जत कीजिएगा जैसे यहाँ आप हमारी करती हैं। आपके व्यवहार से ही हमारी परवरिश जानी जाएगी, इसलिए किसी को हमारी परवरिश में उंगली उठाने का मौका मत दीजिएगा। हमारी सबसे अच्छी बेटी है आप, उस घर जाकर एक अच्छी बहू और पत्नी बनने की कोशिश कीजिएगा। अपने पति की जरूरतों का ध्यान रखिएगा बेटा, वो जगह और लोग आपके लिए अनजान होंगे, तो उन नए रिश्ते के पौधों को प्यार और अपनेपन की भावनाओं से सींचिएगा, तो भविष्य में वो पौधा मजबूत पेड़ बनकर आपको छाया और सुख प्रदान करेगा। वहाँ जाकर कभी ये मत कहिएगा कि आपके मायके में क्या और कैसे होता है, दोनों जगह की कभी तुलना मत कीजिएगा। वहाँ के रीति रिवाजों का मान रखिएगा, जैसा आपकी सास कहें वैसा ही करिएगा। पति के बाद सास का साथ ही सुखी शादीशुदा जीवन की नींव होता है, इसलिए अपनी सास से बनाकर रखिएगा। अक्षय जी के साथ उनके पूरे परिवार को दिल से अपनाइएगा, और वहाँ सबको इतना ही मान सम्मान और प्यार दीजिएगा जितना यहाँ सबको देती हैं। हमारे आंगन से गीली मिट्टी बनकर जाइएगा और उस घर के अनुसार खुद को ढाल लीजिएगा। याद रखिएगा कि इंसान की बोली ही उसे प्यार भी दिलवाती है और सबसे दूर अकेला भी करती है, इसलिए मृदुभाषी बनकर रहिएगा, सबको सम्मान और प्यार दीजिएगा, तो वही प्यार और सम्मान लौट कर आपको मिलेगा।
शुरू शुरू में परेशानी होगी, सब लड़की को होती है, पर धैर्य धारण कीजिएगा, वक्त के साथ आप उस नए परिवेश के अनुसार ढल जाएंगी। जयंती जी की सीख ने उसके लबों पर ताला लगा दिया। अभी रूपाली जी को पलटकर जवाब तो दे देती, पर उनका व्यवहार पहले ही उसके प्रति ठीक नहीं, बात बिगड़ती और सवाल सीधे उसके माता पिता के संस्कारों पर उठते। इसलिए उसने जहर का घूंट पीकर भी खामोशी से उनकी हर बात सुनी, मौन धारण किए बैठी रही। चेहरा सपाट था, लब खामोश, पर मन ही मन अंतर्द्वंद्व चल रहा था। कितनी बेबस और लाचार हो गई थी वो कि अपने परिवार का पक्ष तक नहीं रख पा रही थी। अपने मायके का अपमान होते देखकर भी खामोश थी। अपने घर में कभी कोई गलत बात नहीं सहती थी, पर यहाँ उसे कुछ कहने का अधिकार ही नहीं था। दोनों खानदानों की इज्जत मान मर्यादा का बोझ वो अकेले अपने कंधों पर उठा रही थी। अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर रही थी, पर मन में ये सवाल कुलबुला रहा था कि सारे समझौते वही क्यों करे, सारे एडजस्टमेंट लड़की को ही क्यों करने पड़ते हैं, हमेशा नीचा उसके परिवार को ही क्यों दिखाया जाता है, और क्यों उसे इतना बेबस और लाचार कर दिया जाता है कि वो गलत सुनकर भी उसे खामोशी से सहने पर मजबूर हो जाती है। सवाल थे, पर जवाब ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे थे। आहाना अपने इन्हीं सवालों में उलझी थी जब अन्वय की नाराजगी भरी आवाज उसके कानों से टकराई।